ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರವನ ಚಾರಿ Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Shyama Sundar Radha Shyama Sundar Radha Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय प्रभु पात प्रभु पात पात प्रभु पात
विष्णु पाद परमहंस परिव्राज कचरिष्ठु तिरसुता भय चरणारविंद श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की विष्णु पाद परमहंस परिव्राज कचरिष्ठु तिरसुता श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शेषादि श्री गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोकुल श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की वृंदावन धाम की नवदीप धाम की श्रीकत्र पुरुषोत्तम धाम की गंगा मई जमुना मई की भक्ति देवी की तुलसी महाराणी की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदी आल ग्लोरिस्ट दासम लिमिटेड ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके हम लोग श्रीमद् भागवत से श्रीमद् भागवत के स्कंद चार और अध्याय 13 श्लोक नंबर 35 को आज पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा गया है व्हाइट बोर्ड में, आप लोग देख सकते हैं। इति व्यवसिताः विप्रः तस्य राज्ञः प्रजातये ऊरुडासं निरवपन् शिपिविष्टाय विष्णवे इति व्यवस्थिता विप्राश तस्य रज्ञ प्रजातये पूरुडासं निरवपन् शिपिविष्टाय विष्णवे इति व्यवस्थिता विप्राश तस्य रज्ञ प्रजातये पूरुडासं निरवपन् शिपिविष्टाय विष्णवे इति व्यवसिता विप्रा तस्य रज्ञः प्रजाते पूरुडासं निरवपन् शिपिविष्टाय विष्णवे।
इति व्यवस्थिता विप्रा
अनुवाद इति इस प्रकार व्यवसिता निश्चय करके विप्राह समस्त ब्राह्मण तस्य उसके राज्ञः राजा के प्रजातये पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुरोडासन यज्ञ की सामग्री निरवपन प्रदान की शिपिविष्टाय यज्ञ की अग्नि में स्थित भगवान को विष्णवे भगवान विष्णु को। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हिच डिवाइन ग्रेसेस भक्तिवंत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने के लिए उन्होंने घट घट वासी भगवान विष्णु को आहुतियां अर्पित करने का निश्चय किया। तात्पर्य यज्ञ के अनुष्ठानों के अनुसार कभी कभी यज्ञ स्थल पर पशुओं की बलि दी जाती है। इसे पशुओं की बलि उन्हें मारने के लिए नहीं अपितु उन्हें नया जीवन प्रदान करने के लिए दी जाती है। ऐसा कर्म प्रयोग स्वरूप होता था जिससे यह देखा जा सके कि वैदिक मंत्रों का सही सही उच्चारण हो रहा है या नहीं। कभी कभी चिकित्सा प्रयोगशालाओं में छोटे छोटे पशुओं को औषधीय प्रभाव जानने के लिए मारा जाता है। चिकित्सालय में पशुओं को पुनः जिलाया नहीं जाता, किंतु यज्ञ स्थल में पशुओं की बलि चढ़ाने के बाद वैदिक मंत्रों के बल से उन्हें जीवन प्रदान किया जाता था। इसी श्लोक में सिपि विष्टाय शब्द व्यवहृत हुआ है। सिपि का अर्थ है यज्ञाग्नि की ज्वाला। यदि यज्ञ अग्नि की ज्वाला में आहुतियां डाली जाती है तो भगवान विष्णु वहां ज्वाला के रूप में उपस्थित रहते हैं, इसलिए विष्णु को सिपिविष्ट कहा गया है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साद्रजातं सगणा रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखानितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कंद राधा कंद नमस्तुते। तप्त कंजन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्य देशता जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इति व्यवस्थिता विप्रस्तस्य राज्ञा प्रजाते गुरुड़ा संग निरवपंसि विविष्टाय विष्णवे। इसी प्रकार राजांग को पुत्र प्राप्ति कराने के लिए उन्होंने घट घट वासी भगवान विष्णु को आहुतियां अर्पित करने का निश्चय किया। ये जो अध्याय है ध्रुव महाराज के वंशज के बारे में वर्णन हो रहा है और ये अंग जो राजा यहाँ पर विदुर जी प्रश्न पूछते हैं मैत्रेय जी को। ये राजा अंग बहुत पुण्यवान राजा थे, बहुत पुण्यशाली थे, गुण उनका बहुत अच्छा था, लेकिन गुण और सब अच्छे लक्षण होते हुए भी कैसे राजा अंग अपने पुत्र को छोड़ करके वन चले गए और उनका पुत्र जो था कैसे महापापी बना, कैसे दुष्ट बना, इसे पुण्यवान राजा का पुत्र महापापी कैसे बन गया। तो विदुर जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं मैत्रेय, और मैत्रेय देते हुए सब चीज कहते हैं जहां यहां पर आकर के पहुंच गए हैं। और मैत्रेय कहे कि राजा अंग जब पुत्र नहीं था शोक किए, तो फिर ऋतिज लोगों से उन्होंने निवेदन किया, निवेदन करके यज्ञ करवाया अश्वमेध यज्ञ का। तो अश्वमेध यज्ञ जब करवाए तो फिर अश्वमेध यज्ञ को संपादन करते हुए जब देवताओं को आहुति दिए, देवताओं को समर्पित किए, तो फिर देवताएं सब आहुतियां ग्रहण नहीं किए। तो फिर जब ग्रहण नहीं किए तो फिर वहां पर मैत्रेय जी को फिर विदुर जी पूछते हैं ये कैसे संभव है। तो फिर वहां पर भी अंग जी खुद ऋतिक लोगों से पूछते हैं कि ये कैसे संभव है कि देवताएं राजा पुण्यवान राजा अंग का जो आहुतियां है उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो वो जब पूछे अंग जब पूछे ऋतिक लोगों से पुरोहितों से, तो फिर उसी समय उन्होंने कहने लगे कि राजन तुम तो पुण्यवान हो इसी जीवन में। मैत्र भी बोलते हैं कि राजा बहुत पुण्यवान थे, इसी जीवन में उन्होंने कुछ अपराध वगैरह कुछ भी गलत काम नहीं किया, लेकिन प्रारब्ध कर्म जो पूर्व जन्म का था वो थोड़ा पाप के कारण जितने सारे देवताओं को आहुति दिया जाता था वो सब वो ग्रहण नहीं किए, और इसी के कारण राजा अंग दुखी हुए। दुखी होकर के फिर जाकर के कहने लगे कि अब क्या किया जाए। तो ऋतिक लोग ने उनको उपदेश दिया कि अब चलिए यज्ञ में सारे देवताओं को आह्वान से यह अच्छा है कि यज्ञ में अगर भगवान कृष्ण को आह्वान किया जाए, अगर भगवान विष्णु को यज्ञ पुरुष के रूप में आहुति दिया जाए तो फिर जाकर के सारे देवता अवश्य ही उसको ग्रहण कर लेंगे। आप लोगों को पता है श्रीमद् भागवत अमर पुराण है और प्रथम स्कंद द्वितीय श्लोक में प्रथम अध्याय द्वितीय श्लोक में कहा जाता है कि धर्म प्रुज्जित कैतवत्र, कैतव धर्म को त्याग करते हुए भागवत निर्मत्सर साधुओं के लिए परम धर्म को प्रतिपादित कर रहा है। तो यहां पर जब देवताओं को आहुति मिला तो फिर वो ग्रहण नहीं किए, तो फिर सारे पुरोहित लोग उपदेश दे रहे हैं कि अभी भगवान को अगर अर्पित किया जाए तो फिर जरूर ये देवताएं उसको ग्रहण कर लेंगे। इससे कैसे संभव है? तो ये हम लोग अच्छी तरह से हमको पता है, अनुभव है कि यथा तरोमिचन तृप्यंती तत्स्कंद भुजो प्रशाखा। अगर पेड़ के जड़ में पानी देते हैं तो फिर शाखा प्रशाखा पत्ते फल फूल सब कुछ पानी प्राप्त हो, पानी को पा जाते हैं, जल मिल जाता है सबको। तो कृष्ण को अगर हम आहुति अर्पित करेंगे तो फिर जरूर सारे देवताओं को भी संतुष्ट हो जाएगा। तो फिर वहां पर कहते हैं कौन ऋतिक लोग कि भगवान को, भगवान की संतुष्टि के लिए ही कार्य करना हमारा जीवन का उद्देश्य है। भगवान को प्रीति करना, भगवान को, भगवान की सेवा में हमको अपने सारे इंद्रियों को लगाना, सिर्फ लगाना नहीं अपितु हम ऐसे सेवा करें भगवान की जो उनकी संतुष्टि हो, जो उनकी प्रीति हो। अब जब ऐसा होता है, जब देवताओं की उपासना होता है तो फिर हम जब आहुति वगैरह देते हैं तो देवताएं तीन गुणों के अंदर रहते हैं इस संसार में, सत्व रजतम गुण के अंदर, और उसी नियम जो बनाया गया है वर्णाश्रम के नियम के आधार पर, वो उसी नियम को देखते ही आप लोगों के, हम लोगों के आहुतियों को ग्रहण करेंगे। अगर थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर गलत हुआ, थोड़ा सा भी पूर्व जन्म का पाप रह गया है अथवा कुछ भी हो गया है तो फिर वो आहुति ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसी नियम में वो खुद बंधे हुए हैं और हम भी बंधे हुए हैं। कृष्ण कैसे ग्रहण करते हैं? हालांकि हमारा इंद्रियां दूषित है, इसी से स्पष्ट होता है इसी आख्यान से कि इसी विषय वस्तु से कि भगवान कृष्ण किसी चीज को भी जीव के पाप पुण्य को कुछ ग्रहण नहीं करते, तुरंत जीव का रेसिप्रोकेशन अथवा जीव का जो है सेवा को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। अगर श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ वो पहली बार अर्पित करता है अथवा कुछ करता है, तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। ये कैसे संभव है? भगवान तीन गुण से परे हैं और जीव और देवताएं सब तीन गुणों के अंदर ही संसार में कार्य करते हैं। तो इसी श्लोक से ही प्रतीत होता है कि भगवान कैसे ग्रहण करते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो, मैं किसी का पाप और पुण्य को पकड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि उनको भगवान जो आपके साथ संबंध तुरंत जुड़ेंगे वो आत्मा के लेवल, परमात्मा के लेवल पर, भगवान के लेवल पर, स्तर पर ही होगा। और जो क्रियाएं हम करेंगे, भगवान को अर्पित किए क्रियाएं करेंगे, इस दूषित इंद्रियों के द्वारा भी वो भी क्रिया उसी स्तर पर होगा जिस स्तर पर भक्ति या भक्ति की अभ्यास किया जाता है। तो भक्ति की अभ्यास जो है, भक्ति जो है वो तीन गुणों से परे है, स गुणान समति तैतन ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भक्ति तीन गुण से ऊपर है, तो भक्ति की क्रियाएं भी तीन गुण से ऊपर है, आत्मा का साथ संबंध है उसका, जिसके कारण भगवान तुरंत ही ग्रहण कर लेते हैं। कभी कभी जैसे आप लोगों को पता होगा कि गोपियां, गोपियां भगवान को बहुत बुलाते हैं, जैसे गोपी गीता हम पढ़ते हैं तो भगवान वहां पर दर्शन नहीं देते हैं उनको, तो फिर उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि मैं आपके अंदर छुपा जो प्रेम है मेरे प्रति उसी को और बढ़ाना चाहता हूं, तो उसी के कारण भगवान कभी कभी कृतवान किल कर्माणी सहरामेण की सब अति मर्त्यानी भगवान गूढ़ कपट मानुषः। कपट मनुष्य के रूपों में वो दो प्रकार के जीवों के प्रति कपट मनुष्य के रूप में काम करते हैं, लीलाएं करते हैं, अति मर्त्य लीला करते हैं। कैसे? जैसे जो जितने सारे राक्षस हैं, जरासंध इत्यादि राक्षस जो है, जरासंध इत्यादि जो राक्षस है उनको ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान जाकर के खुद मार देते हैं उनको, कपट मनुष्य के रूप में। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान साक्षात हैं ये, दूसरों के माध्यम से भीम आदि को माध्यम से जरासंध को मरवा दिया जाता है, कपट लीला करते हैं उनके साथ। तो फिर भक्तों के साथ भी कपट लीला करते हैं कैसे? लेकिन भक्तों के साथ कपट लीला करते हैं, लेकिन भक्तों के साथ कपट लीला करते हैं भक्तों को प्रेम को बढ़ाने के लिए, और जरासंध इत्यादि राक्षसों के साथ कपट लीला करते हैं उनको मारने के लिए। भगवान के हाथ से, भगवान के भक्तों के हाथ से जो भी मरता है मुख्यों को प्राप्त करते हैं कंस इत्यादि, लेकिन हमको रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि आचार्यों से यही श्रील प्रभुपाद से हमको मिला है कि अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जना, कि हम भक्ति के साथ जो अनुकूल है उसी को अपने जीवन में अभ्यास करने के प्रयास करते हैं और उसी के अभ्यास करते हुए भक्ति में सिद्धि प्राप्त करते हैं। अथ पृच्छामि संसिद्धिम योगिनम परमम कुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। तो ये प्रश्न पूछे थे परीक्षित। अथ पृच्छामि संसिद्धिम योगिनम परमम गुरु। सुखदेव गोस्वामी को पूछे कि मैं कैसे जीवन में परफेक्शन को प्राप्त करूं, परम सिद्धि को प्राप्त करूं। म्रियमाणस्य सर्वथा, जो जीव हर समय मर रहा है अथवा मरने के समय पर उपनीत है तो उसी समय वो कैसे परम सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। तो इसी राजा वेण का जो जीवन चरित्र है और यहां पर अंग राजा जो भगवान को संतुष्टि के लिए यज्ञ कर रहे हैं देवताओं को त्याग करके, तो इससे प्रतीत होता है कि हम लोग भगवान के लिए ही काम करना चाहिए, केवल भगवान के लिए। एक मनुष्य एक मन में केवल भगवान के लिए ही काम करना चाहिए। तो भगवान के लिए ही अगर काम करेंगे तो फिर जाकर के भगवान संतुष्ट होंगे। और ये यहां पर जो काम हो रहा है, यहां पर जो देवताएं काम कर रहे हैं, यहां पर जो अंग राजा काम कर रहा है किसके लिए ना, भगवान के लिए, वो ही आत्मा के लेवल पर और भक्ति के लेवल पर ही है, जिसके कारण भगवान खुद प्रकट होकर के यज्ञ पुरुष विष्णु प्रकट होकर के उनके सेवाओं को स्वीकार करते हैं। और ये जो लीलाएं हम लोग कहते हैं कि भगवान हमारे कभी कभी अगर हमसे छुप करके कुछ कार्य हमारे लिए करते हैं तो प्रिय हमारे प्रेम को उनके लिए बढ़ाने के लिए ही करते हैं। आपको पता है श्रीमद् भागवत के प्रथम से लेकर अंत तक वैराग्य आख्यान संयुतम हरि लीला कथावार्ता अमृत आनंदनीय सुरम। तो भागवत के प्रथम से लेकर के अंत तक वैराग्य आख्यान संयुक्त वैराग्य के बारे में वर्णन हुआ है। तो हम लोगों को कभी अलग तरीके से वैराग्य अथवा ज्ञान को अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। अगर भागवत को पढ़ेंगे, अगर भागवत को समझेंगे तो फिर डायरेक्टली हमारे हृदय के अंदर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। इसके कारण वो सुत गोस्वामी सोनकादि ऋषियों को द्वादश स्कंद भागवत में ये चीजों को कहते हैं। और वो कहते हैं क्यों अंत में मायावादी अथवा ज्ञानी पुरुष होते हैं जो शुष्क मनन चिंतन करते हैं भगवान के रूप गुण लीला जो उनके हृदय के अंदर प्रवेश नहीं करता, मन के अंदर प्रवेश नहीं करता, उन्हीं को वो उपदेश देते हैं कि भागवत पढ़िए, क्योंकि भागवत के अंदर आदि मध्यावसान से वैराग्य आख्यान संयुतम हरि लीला कथा वार्ता अमृत आनंदनीय सूरम। भागवत के प्रथम से लेकर के अंत तक हर जगह पर वैराग्य के बारे में वर्णन है। अगर कोई व्यक्ति वैराग्य अथवा ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है तो फिर अगर वो भागवत पढ़ेगा तो स्वयं है वो। जैसे यहाँ पर द्वंद हमारा विनाश हो जाता है इसी विषय वस्तु से कि देवताओं की आराधना अलग तरीके से करने की जरूरत कभी नहीं पड़ता। कृष्ण गीता में इसको बार बार कहते हैं, देवताओं की उपासना वही करते हैं अल्पमेधसम जिनका बुद्धि स्वल्प है, देवताओं का उपासना वो नहीं करते हैं, वो करते हैं देवताओं क्योंकि वो अल्प बुद्धि वाले होते हैं। अर्थात वो कहते हैं कि मेरे उपासना जो करते हैं वो ही भक्ति के जो चरम सिद्ध है परम सिद्धि है उसी को प्राप्त करने वाले हैं। तो वैराग्य और ज्ञान को अगर हम अलग तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे जो भक्ति के साथ युक्त न हो तो फिर क्या समस्या है। तो समस्या यही है कि अगर वैराग्य और ज्ञान को अलग तरीके से अभ्यास करेंगे तो फिर हमारे मन के अंदर क्या होगा ना, कृष्ण चेतना अथवा भगवान का रूप गुण लीला इत्यादियों का विद्यमान हो नहीं सकता है। और जिसके कारण बस कई लोग ज्ञानी बन जाते हैं। कृष्ण उद्धव को उपदेश देते हुए चीज कहते हैं कि एकादश का तस्मात मत भक्ति युक्तस्य, कहते हैं कि मेरे भक्ति से जो ज्ञान विज्ञान च श्रेय भवेत, कहते हैं कि ज्ञान और विज्ञान जो है उसी को अलग तरीके से अभ्यास करने की आवश्यक नहीं, क्योंकि वो स्वतः भक्ति से उत्पन्न हो जाता है। तो अगर ज्ञान और वैराग्य को अलग तरीके से अभ्यास करेंगे तो फिर हमारे जीवन में ये भगवान के जो कथा हरिलीला कथा वार्ता ये सब प्रकट नहीं होने वाला है, जिसके कारण उसी श्लोक में ही सूत को समित सोनकादिर ऋषियों को कह देते हैं कि ज्ञान और वैराग्य की सूक्ष्म रूप से प्रैक्टिस करने की अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी रूप सनातन ये सब ज्ञान वैराग्य की अभ्यास बहुत अच्छी तरीके से किया आप लोगों को पता है, लेकिन वो भक्ति के साथ युक्त है, युक्त वैराग्य उनको कहा जाता है। जब हम किसी भी तपस्या करते हैं भक्ति में अगर किसी भी तपस्या करते हैं वो युक्त वैराग्य कहा जाता है। तो वो कभी जैसे भागवत का ज्ञान हो, भागवत का विज्ञान हो, भगवत गीता का ज्ञान हो, चैतन्य चरितमृत का ज्ञान हो, ये सारे ज्ञान और विज्ञान के साथ संयुक्त है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो फिर उनका इंद्रिय भगवान की सेवा में लगता है, इसके कारण हम कहते हैं नित्य भागवत सेवा करते हैं, हम सुनते हैं तो फिर सेवा करते हैं। तो इसी के कारण भागवत का एक नाम है मोहिनी, मोहिनी कैसे ना यत सूरम, जब भगवान जब समुद्र मंथन हुआ था उसी समय सागर मंथन हुआ था, उसी समय अमृत निकला था, तो अमृत को भगवान खुद मोहिनी अवतार में देवताओं को पान करवाए थे, असुरों को पान नहीं करवाए थे, तो देवताएं उनके भक्त हैं और वो भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं, भगवान उनके प्रति आकृष्ट होते हैं, इसी के कारण वो कहते हैं यत सूरम। तो ये भागवत देवताओं के लिए अथवा भगवान के भक्तों के लिए ही प्रकट हुआ है, तो भगवान के भक्त ही जब भागवत पढ़ेंगे तो फिर भक्ति करने के लिए समर्थ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसी के कारण तुलया मल्लवे ना सुर्गम ना पुनर्गम, थोड़ा सा अगर जैसे आप लोग हम लोग मैं कह रहा हूं भागवत आप सुन रहे हैं अथवा आप सुन रहे हैं मैं पढ़ रहा हूं किताब से पुस्तक से ग्रंथ से, तो फिर आप मेरा एसोसिएशन नहीं कर रहे हैं कि मैं आप लोगों का नहीं कर रहा, हम लोग मिलकर के भागवत का संग करते हैं, भागवत के अंदर छुपा हुआ भगवान का विषय वस्तुओं का संग करते हैं। और भगवान संपूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र है और उनके पवित्रता के कारण हम लोग आत्मा का जो संबंध है उनके साथ सेवा करना उसमें स्थापित हो जाते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से हम लोग भागवत को पढ़ते हैं और भागवत को सुनते हैं, कहने की प्रयास करते हैं, और इसी को सुनने थोड़ी देर के लिए अथवा ये कुछ समय के लिए अथवा बहुत काल तक अगर सुने तो फिर अगर कह देंगे थोड़ी देर के लिए और फिर भी सुन ले तो फिर ये स्वर्ग का सुख है और ये मुक्ति का प्राप्त सुख जो है उससे भी बहुत बढ़कर है। तो और क्या इस संसार में मृत्यु लोक में और जो चीज प्राप्त होता है, बड़े बड़े धनीवान व्यक्ति अथवा जो व्यक्ति वो भी धन को धनशाली व्यक्ति जो धन प्राप्त करते हैं उनके लिए भी क्या कहा जाए कि अगर वो धन को और प्राप्त करते हैं अथवा बड़े धनी होते हैं, किम उत आशीष किम उत क्या कहा जाए, अगर फिर भी हम इसी संसार में हमको प्रचुर धन मिलता है, उसी थोड़ा सा संग भागवत संग अथवा थोड़ा सा भगवान के भक्तों के संग अगर मिल जाता है तो फिर इसी संसार के सुख स्वर्ग के सुख मुक्ति का सुख से बहुत बढ़कर होता है। इसलिए हम लोगों को भागवत के संग ही करना चाहिए, लेकिन भागवत को संग करने के लिए राजा वेण तो कुछ समय में के अंदर भगवान के दर्शन प्राप्त किए, उससे पहले वेण को अंग को कहे थे ऋषियां कि राजन हम तो मंत्र ठीक तरीके से पढ़े थे, हमारे मंत्र को पढ़ने में कुछ गलत नहीं हुआ है, और यहां यज्ञ सामग्री जो तुमने ला करके दिया वो तो डुप्लीकेट नहीं है, जैसे कलयुग में यज्ञ नहीं कर सकते हैं क्योंकि सामग्री नहीं मिलता है ठीक से, गायें भी नहीं है, दूध नहीं है, घी नहीं है ठीक से, तो फिर वो कहते हैं कि यज्ञ की सामग्री जो मिला तो फिर वो भी असली है नकली नहीं है, तो फिर यहां पर देवता क्यों ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो ये जो ऋतिक लोग कह रहे हैं अंग को, अंग वहां पर भगवान को प्रीति करने के लिए वही चीज को अर्पित करते हैं और भगवान ग्रहण करते हैं। तो हम लोगों को ये जो भगवान को थोड़ा सा सेवा करने से भगवान संतुष्ट होते हैं, लेकिन वो किसी गुरु और किसी शास्त्र के माध्यम से अगर किया जाता है तो फिर जाकर के वो सफलता को प्राप्त करते हैं। अगर राजा अंग अलग तरीके से खुद भगवान को प्रार्थना करने के प्रयास करते, ऐसा हो सकता था कि भगवान उसके सेवा को ग्रहण कर नहीं सकते थे तुरंत। उनको ऋतिक लोगों को गुरु बनाया, गुरु बना करके उनके आदेश के आधार पर भगवान को अर्पित किया, फिर भगवान जा करके ग्रहण किए, तुरंत ही ग्रहण कर ले। तो यही होता है कि जीवन में परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए अगर गुरु के आदेश पर कुछ करते हैं तो फिर एक क्षण में ही परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। अगर गुरु के आदेश पर कुछ चीज नहीं किया जाता है तो फिर आरोह्य कुछ श्रेण परम पदम तथा पतंत्य दोनादृत विस्मद अंग्रया। अगर कुछ तपस्या करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, फिर भी ये संभव नहीं होता। तो हमारे जीवन में यही ही उद्देश्य रहता है कि हम लोग कैसे भगवान की सेवा प्रीति के साथ गुरु साधु शास्त्र के आदेश पर किए करेंगे, ताकि जाकर के हमारे जीवन में सफलता प्राप्त। तो श्रद्धा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो फिर जाकर के हमको परम सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। ये भी मुख्य चीज है। इसके कारण हम लोगों के अंदर सात्विक श्रद्धा मिलना चाहिए। जैसे मैंने कहा, ज्ञान और वैराग्य की अलग तरीके से उपासना नहीं होना चाहिए, अथवा अलग तरीके से अभ्यास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य जो है सत्वगुण के अंदर रहते हैं। तो भगवान का जो विषय वस्तु है सत्वगुण से ऊपर है, और भगवान के जितने सारा शास्त्र है सत्वगुण से ऊपर है। इसलिए हम लोगों को जो भक्ति के क्रियाएं करना है, जो श्रद्धा से शुरू करना है अथवा विश्वास से शुरू करना है, वो थोड़ा क्या होना चाहिए, सात्विक नहीं होना चाहिए, अपितु शुद्ध सत्व गुण में रहना चाहिए। क्योंकि भगवान जितने भी अवतार लेते हैं उनका शरीर शुद्ध सत्व, सत्वम विशुद्धम श्रेयते भगवान स्थित शरीरिणाम श्रेय उपायन बपुह। सत्वम विशुद्धम श्रेयते भगवान स्थित, देवता कहते हैं कि सत्व विशुद्ध सत्व के अंदर भगवान का शरीर रहता है, वो वहीं पर स्थिर रहते हैं। तो भगवान को के लिए अगर भक्ति के माध्यम से कोई भी क्रिया किया जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली वो शुद्ध सत्व के अंदर रह हो जाता है हम लोग। अतः ऑटोमेटिकली अगर हम थोड़ी सी कृष्ण नाम कर लेते हैं श्रद्धा के साथ, तो तुरंत ही हम लोग तीन गुण से ऊपर हो जाते हैं, तुरंत ही तीन गुण से ऊपर हो जाते हैं। क्योंकि वो क्रिया जो होता है वो भगवान का होता है। तो हमारे जितने इंद्रियां हैं अशुद्ध हैं, तो वो इंद्रियां भी भगवान की सेवाएं के लिए बनाया गया है। कैसे? ना दसवीं स्कंद भागवत में जब ऋषिचरी प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं कि बुद्धि इंद्रिय मन प्राणम जनानम असृजत प्रभु आत्मार्थम, बुद्धि इंद्रिय मन प्राणम जनानम असृजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। हमारे जो इंद्रिया सब बनाया गया है वो तीन कारण से बनाया गया है, और वो तीन कारण का स्तर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक होता है। वो कैसे हैं? वो कहते हैं कि बुद्धि इंद्रिय मन और प्राण, जनानाम लोगों का क्रिएट किया गया है अथवा सृजन किया गया है अथवा बना गया है। क्यों? ना वो कहते हैं मात्रार्थम, जब जीवों को इंद्रियां दिया जाएगा अथवा बुद्धि मन प्राण इत्यादि दिया जाएगा तो फिर वो भोगेंगे, भोगने के लिए ही शरीर को दिया गया है उनको, तो फिर भोगेंगे। वो कहते हैं बुद्धि इंद्रिय जनानाम असृजत प्रभु मात्रार्थम, मात्राओं को भोगने के लिए, तन्मात्राओं को भोगने के लिए वो दिया गया है। फिर तन्मात्राओं को भोगेंगे तो फिर क्या होगा उनका? तो फिर तन्मात्राओं को भोगेंगे तो फिर जाकर के संसार सागर में फंसेंगे, फंस जाएंगे। वो कहते हैं संसार सागर में जब फंसेंगे तो फिर क्या होगा? तो लोग इस संसार में बहुत दुखों को पाएंगे, सुखों को पाएंगे, भौतिक सुख दुख तीन गुणों के अंदर रहेंगे। इसी के कारण बुद्धि इंद्रिय मन प्राण दिया गया है। तो अंत में कहते हैं कि आत्मने अकल्पनाय च, तो कहते हैं ठीक है, इस संसार में तो भोग करने के लिए बुद्धि इंद्रिय मन और प्राण को दिया गया है, लेकिन इसके साथ आत्मने अकल्पनाय च, आत्मा को जानने के लिए दिया गया है। आत्मा शब्द से आत्मा और परमात्मा दोनों ही अर्थ होता है, लेकिन आत्मा को कैसे जानेंगे? ज्ञानी और वैरागी पुरुष जैसा नहीं होता, अकल्पनाय च, कल्पना पूर्वक नहीं, अनुमान पूर्वक नहीं, कल्पना करते हैं। कल्पित आसन मतलब मन के अंदर अगर कुछ हमारे भाव उत्पन्न होता है तो फिर मन के अंदर स्पेकुलेशन करते हैं, तो फिर उसी के हिसाब से आत्मा को समझना नहीं है हमको। शास्त्र, साधु और गुरु के माध्यम से ही शास्त्र को आत्मा को समझना है, अनुभव करना है। तो इसी के कारण जो इंद्रियां हमारा दिया गया है वो अगर भगवान के कुछ भी क्रियाओं में लग जाता है तो फिर तुरंत भक्ति हो जाता है, हम तीन गुणों से ऊपर हो जाता है। हालांकि हमारे समझ में वो आनंद को अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर हर मोमेंट में हम लोगों को विशेष सुख और भक्ति के सुखों को दोनों को प्राप्त होता है। कभी कभी विशेष सुख ऊपर हो जाता है भक्ति के सुख से, और भक्ति सुख कभी कभी ऊपर हो जाता है विशेष सुख से। तो विषयों का सुख बहुत रहता है, क्योंकि बहुत जन्म से ये शरीर को धारण करके उसका अभ्यास करना पड़ता है। तो इंद्रियां अपने आप अभ्यस्त हैं विषय सुखों से, इसके कारण भक्ति को सुख होगा हम लोगों को अनुभव नहीं हो पा रहा है। तो इसी के कारण अगर भक्ति का सुखों का अनुभव नहीं होगा तो फिर हम लोग भक्ति कैसे करेंगे। इसी के कारण हम लोगों को जो इंद्रिया दिया गया है साधुओं के माध्यम से, हम लोगों को कहा जाता है कि अभ्यास कीजिए, अभ्यास करेंगे तो फिर एक दिन शुद्ध बन जाएंगे इंद्रिया। आप लोगों को पता है कि हम लोगों के अंदर क्या है ना, परिश्रा पेशाब करने वाला मार्ग होता है, दो द्वार होता है, और जिस स्थान से मल जाता है पेशाब जाता है वो इंद्रियां होते हैं। वो इंद्रियां भी भगवान के सेवा में के लिए ही क्रिएट किया गया है। वो इंद्रियां भी विष्णु रहस्य में भगवान विष्णु खुद कहते हैं, अतो पायु उपस्थम तचित स्वास्थ्यम यतो भवेत तत् साधनम आराधनम। विष्णु रहस्य में कहते हैं उत्सर्गात मल मूत्रादेश यतो स्वास्थ्यम यतो भवेत तो चीतम यतो भवेत अतपायु उपस्थम च तत् साधनम आराधनम। वो कहते हैं कि हमारे जो मल और मूत्र जो जाने वाला इंद्रियां है वो क्रिएट किया गया है क्योंकि ताकि हमारा शरीर ठीक रहे। अगर शरीर ठीक नहीं रहेगा तो फिर भजन साधन नहीं कर सकते। इसी के कारण वो इंद्रियों को बनाया गया है। तत् साधनम आराधनम, और कहते हैं कि वो इंद्रियां अगर सही नहीं रहेगा तो फिर हम लोग का हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, हम भजन साधन नहीं कर सकते। तो फिर वहां पर भोग की मात्रा के ऊपर कहा नहीं जा रहा है उस लोग, वो कहा जा रहा है कि इंद्रियों को क्रिएट किया गया है भगवान की सेवा में लगाने के लिए। अतः पायु उपस्थम च तत् साधनम आराधनम, आराधना करने के लिए वही साधन का विषय वस्तु है जिसके माध्यम से हम भगवान की आराधना करते हैं। इसलिए अगर ये इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए यूटिलाइज किया गया है अथवा भगवान की सेवा के लिए ही बनाया गया है तो फिर और जितने सारे इंद्रियां हैं तो फिर उनका तो होना ही चाहिए। जैसे आप लोग भागवत सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं, तो फिर भागवत को हम परम आदर कैसे देंगे? जो जीव परम आदर देगा उसके लिए भागवत मोहिनी होगा, जो व्यक्ति परम आदर नहीं देगा भागवत को तो फिर उसके लिए मोहिनी अवतार नहीं है भागवत। तो परम आदर कैसे देंगे? जब सौनक आदि ऋषि बैठ करके सुन रहे थे तो फिर उन्होंने एक चीज कहा, प्रथमे सम्मान देते हुए आदर देते हुए भागवत को उन्होंने कहा कि वयम तू न वित्रुप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। उत्तम श्लोक को पराक्रम के, भगवान के पराक्रम को सुनते हुए बार बार हमारे मन तृप्त नहीं हो रहा। ये एक नियम है, ये एक श्लोक नहीं है, ये भागवत के अंदर एक नियम स्थापित किया गया है जिस नियम को श्रोताओं को और प्रवक्ताओं को भी ले लेना चाहिए दोनों की तरफ से। भागवत श्रवण अलम्बुद्धि न शिष्यात्, भागवत श्रवण में कभी अलम्बुद्धि नहीं होना चाहिए कि मैंने ये विषय वस्तु को जान लिया हूं, मुझे और सुनने और समझने की जरूरत नहीं है। अलम्बुद्धि न शिष्यात्। तो वो कहते हैं, तो फिर इससे क्या होता है, प्रतीत होता है कि हम लोग भागवत जो साक्षात कृष्ण है भगवान है उनको जो देखने से हमारे चक्षु इंद्रियां भगवान की सेवा में लगता है, उनके चरण में पुष्प अर्पित हुआ हम आग्रहण करते हैं तो फिर उनकी सेवा में लगता है। हम जब अपने ही इंद्रियों को उनकी सेवा में लगते हैं, उनके चरण से पुष्प लेकर के प्रसाद खा करके उचिष्ट खा करके, ऐसे ही हमारा इंद्रिया सब भगवान की सेवा में के लिए ही बनाया गया है भगवान की तरफ से। हर जगह पे इसका वर्णन होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में उत्तम भक्ति को शुरू करने से पहले ही ये चीज कह देते हैं, कौन नारूप सर्व उपाधि विनिरूपकम तत्परत्व निर्मल ऋषिकेण ऋषिकेश सेवन, यही सेवा होता है। इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में लगाते हैं तो फिर इसीलिए हम लोग अगर सत्वगुण में रहेंगे, सत्वगुण में रहेंगे तो फिर हमारा जो मन है, जो मन है तो वो सत्वगुण में रहेगा। अगर मन सत्वगुण में रहेगा तो फिर वो एक घर बनेगा। मन अगर सत्वगुण में रहेगा वो एक घर होगा, जिसी घर में क्या होगा ना, भगवान के आदर किया जा सकता है, भगवान की सेवा किया जा सकता है, आतिथ्य की मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। लेकिन मन अगर शुद्ध सत्व में नहीं रहेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग भगवान की भक्ति अथवा भगवान के शास्त्र ग्रंथ को परमादर नहीं दे सकते हैं। इसलिए भगवान के जो दिया गया मन हम लोगों को, वो मन को एक सत्वगुण में रखना है हम लोगों को। तो सत्वगुण के स्तर पर कैसे आएंगे हम लोगों को, तो वो कहते हैं कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशय खीयते चास्य कर्मणि मयि दृष्टे अखिलात्मनि, मयि दृष्टे अखिलात्मनि वो कहते हैं कृष्ण किधर ना द्वादश स्कंद एकादश स्कंद भागवत में, मयि दृष्टे अखिलात्मनि कि जब हम कृष्ण के विषय में सुनेंगे, जस्ट सुनते रहेंगे, भागवत को अध्ययन करते रहेंगे तो करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली स्वतः करने की कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, वो एंट्री करेगा। जो सूक्ष्म शरीर है, कृष्ण इसके बाद कहते हैं जो सूक्ष्म शरीर है अहंकार है, वो सूक्ष्म शरीर अहंकार मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है वो नष्ट हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। तो सूक्ष्म शरीर जब विनाश हो जाएगा तो फिर उसी समय अगर हमारे मन सदैव शुद्ध सत्व में रहेगा तो भक्ति योग करने से ऑटोमेटिकली क्रियाओं को करने से मन के अंदर क्या रहता है ना, सत्व गुण का निवास, और जहां पर कृष्ण के आदर, और जहां पर भगवान कृष्ण के भक्त लोग हो अथवा कोई व्यक्ति हो, उनके दृष्टिकोण से ही, उनके मन के शुद्धता के हिसाब से ही वो लोग भगवान को सम्मानित करते हैं, आग्रह देते हैं, भागवत के विषय वस्तुओं को आदर देते हैं, यही कहा गया है। तो अगर हम लोग मन को शुद्ध नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। तो फिर इसी के कारण हम अभ्यास में लगाते हैं मन को बार बार कृष्ण चेतना के विषय वस्तुओं को समझने के लिए। एवं विदा भगवतो या वृंदावन चारिण वर्णयन्तो मिथो गोप्यः, वर्णयन्तो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन मयताम ययुः। वेणुगीत में यह वर्णन है, एवं विधा भागवतो या वृंदावन चारिणः, वृंदावन में विचरण करने वाले भगवान कृष्ण, वो एवं या वृंदावन चारिण कई प्रकार के लीलाएं करते हैं, या विधा क्रीड़ा कई प्रकार के क्रीड़ाएं करते हैं, कई प्रकार के लीलाएं करते हैं। तो कई प्रकार के लीलाएं क्रीड़ाएं जो करते हैं उन्हीं को किस लिए करते हैं, वो कहते हैं कि वर्णयन्त मिथो गोप्यः, जो गोपी हैं वृंदावन के वो क्या करते हैं, वो वर्णन करते हैं, वर्णयन्त मिथो गोप्यः, वो गोपी लोग वर्णन करते हैं, सिर्फ वर्णन करते हैं, एक वर्णन करता है तो फिर दूसरे सुनते हैं, दूसरे वर्णन करते हैं और कोई सुनते हैं, तो उससे क्या होता है जब ये वर्णन करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्रीड़ा तन्मयता ये हो, तन्मयता को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान के प्रेम में ऑटोमेटिकली आविष्ट हो जाते हैं। जब उनके द्वारा किया गया वृंदावन में लीलाओं को सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली वो तन्मयता को प्राप्त कर लेते हैं। तन्मयता का अर्थ है कि संपूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में आविष्ट हो जाता है। जैसे हम आंख सिर्फ नहीं है भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए, हमारी आंख को भगवान कृष्ण के लिए सिर्फ दर्शन करने के लिए नहीं किया गया है। कैसे ना, गोपियां कहते हैं कि हम लोग भगवान के कृष्ण के विषय रूपों को देखना चाहते, दर्शन लालसा, लेकिन वास्तव में गोपियां कितना रोते थे, तो रोना जो होता है आंख के माध्यम से ही होता है, तो वही कृष्ण को बहुत संतुष्ट करवाता है। तो भगवान कृष्ण को के लिए कार्य करके उनको संतुष्ट करना ये भक्त के डेडिकेशन के ऊपर निर्भर करता है। भक्त कितना अपने ही इंद्रियों को समर्पित किया है, कितना ही अपने घर को छोड़ा है, कितना ही अपने आप को कृच्छ बना दिया है, कितना ही अपने आप को समर्पित कर लिया है, उसी के आधार पर भगवान उसके साथ रेसिप्रोकेशन। सब तो भक्ति करते रहते हैं, ब्रह्मा शिव और सब कोई उद्धव, जैसे तीन हरिदास वर्य होते हैं, युधिष्ठिर महाराज और कौन होते हैं, उद्धव होते हैं, और कौन होते हैं, गिरिराज जो सबसे श्रेष्ठ है, तो ये तीन हरिदास वर्य होते हैं। इन तीन हरिदास वर्यों का सर्वसा इच्छा रहता है कि हम भगवान के सेवा में नित्य निरंतर लग रहे हैं। तथा ये तीन लोग वास्तव में गोपियां गोवर्धन की ही प्रशंसा करते हैं, हालांकि युधिष्ठिर अथवा उद्धव की इतना प्रशंसा नहीं करते हैं, गोवर्धन की बहुत प्रशंसा करते हैं गोपियां, और कहते हैं कि गोवर्धन की अगर कृपा हमको प्राप्त न हो तो फिर हम लोग भगवान कृष्ण के लीलाओं को अथवा आपके साथ यहां रमण नहीं कर पाते, कृष्ण को खुद कहते हैं। तो फिर इसीलिए वहां जो ये दो हरिदास वर्य सदा भगवान के लिए, भगवान को संतुष्ट रखने के लिए अच्छे भक्तों की, गोपियों जैसे भक्तों की कृपा को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। तो गोपियों का जो डेडिकेशन इन हरिदास वर्यों से बहुत उत्कृष्ट है, बहुत श्रेष्ठ है। सब कुछ समर्पित किए हैं, सब कुछ छोड़ दिए हैं, इसी के कारण भगवान उनके साथ हर समय रहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को यही समझना चाहिए कि हम लोग कैसे कृष्ण चेतना में अपने आप को ऐसे तरीके से समर्पित करें ताकि भगवान हमारे साथ भी कुछ संबंध रखे, जैसे उनके ही नित्य पार्षदों के साथ संबंध रखे थे। इसलिए संदेह, कभी कभी भगवान जब अति मर्त्य लीला करते हैं तो फिर संदेह जीवन में उत्पन्न होता है। जब भगवान गिरि गोवर्धन का धारण किए, गिरि गोवर्धन का धारण करने के बाद ये गोप और गोपियों को कभी अवसर नहीं मिला कि कृष्ण कैसे इतना बड़ा पहाड़ को उठा लिए सोचने के लिए थोड़ा। तो फिर वो छोड़ करके वहां से आ गए, गोवर्धन धारण का उत्सव समाप्त हो गया। तो गोवर्धन उत्सव का धारण जब समाप्त हो गया तो फिर वो छोड़ के आ गए। आने के बाद वो घर में आकर के नंद के गांव में सोच रहे हैं कि किसे संभव ये 7 साल का लड़का गिरि गोवर्धन को धारण कर लिया। अगर ये एक छोटा सा लड़का है, अगर ये भगवान है तो फिर ये हमारे गांव में क्यों जन्म लिया, यही उनका मन में प्रश्न आया। अगर ये कृष्ण नहीं है तो फिर उन्होंने गिरि गोवर्धन से अगर ये भगवान नहीं है तो फिर उन्होंने गिरि गोवर्धन से पर्वत को, पहाड़ को कैसे अपने अंगूठे में उठा लिया, हाथ में उठा लिया। तो ये मन में उनकी संशय आया सारे गोपों गोपियों के। तो फिर उन्हीं संशय को दूरी करने के लिए वो आए थे इधर नंद के बारे, नंद को पूछने के लिए अब क्या करें। तो जब कभी भी हमारे मन में भगवान के विषय प्रश्न, ब्रजवासी सब आए उनको पूछने के लिए, तो हमारे मन में कभी अगर कृष्ण के बारे में संशय उत्पन्न होता है तो फिर हम लोग तुरंत उसी संशय के निवारण के लिए किसी ऐसे व्यक्तियों के पास जाते हैं जहां पर हमारा संशय का निवारण हो सके। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, भगवत भक्ति में भगवान के अतिमर्त्य लीलाओं में तो संशय उत्पन्न होगा, हालांकि हम लोग बहुत साल से भगवत भक्ति करते हैं लेकिन फिर भी हमारा डिग्रेडेशन होता है, कभी कभी पतन हो जाता है, हमारा विश्वास में इतना स्ट्रंग नहीं होता, दृढ़ नहीं होता। इसी के कारण हमको एसोसिएशन की जरूरत पड़े। जब नंद को जाकर के पूछे ये कैसे संभव है कि बालक जब 3 दिन का था तो फिर उन्होंने पुतना को मार दिया, पुतना को प्राण को ले लिया, जैसे समय युवक का यौवन को हरण कर लेता है ऐसे ही ये कृष्ण 3 दिन में पूतना को नष्ट कर लिए, पूतना को संहार कर लिए। और ये 3 महीना के थे, 3 महीना का थे जब अपने पैर को उछाल रहे थे, पैर को उछालने के समय पर सकट था, सकटासुर के रूप में आया था, तो फिर सकटासुर को उन्होंने निधन कर दिया। तो फिर 1 साल के थे ये जब तृणावर्त आया था, तो तृणावर्त उठा करके उनको ले गया था, तृणावर्त के गले को पकड़ करके उनको तृणावर्त को मार दिया था। तो ये सारा कई प्रकार के लीलाओं को, अतिमर्त्य लीलाओं को कहते हुए भगवान को नंद को पूछने लगे कैसे संभव है। तो नंद उनको जाकर के गर्ग मुनि क्या कहे थे उसके विषय में उनको वर्णन हुआ। तो फिर जाकर के गर्ग मुनि के वचन को सुन करके उनके मन में सारे ब्रजवासियों के मन में कृष्ण के प्रति फिर दृढ़ विश्वास स्थापित हो गया। भगवान के प्रति जब दृढ़ विश्वास, तब कृष्ण बलराम नहीं थे वहां पर, तो कृष्ण बलराम फिर पुनः आकर के पहुंच गए। तो फिर जाकर के उनको वो श्रृंगार इत्यादि किए, तो कृष्ण बलराम आकर के पहुंच गए। तो फिर विश्वास अगर कभी हमारे जीवन में कहीं पर भगवान के विषय वस्तु में लीलाओं के अंदर थोड़ा सा नीचे चला जाता है, तो फिर हम लोग तुरंत कहीं पर आश्रय लेते हैं जहां पर हमारे संदेह को दूरीभूत किया जा सकता है। तो वो होते हैं भगवान के श्रेष्ठ भक्त महाभागवत इत्यादि, जो भगवान के विषय वस्तु को सही से ढंग से सिद्धांत से हम लोगों को बता करके हमारे संदेहों का निवारण कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर खत्म करता हूं आज का क्लास को। अगर कोई किसी का प्रश्न है, एक प्रश्न पूछ सकते हैं। आप पूछ लीजिए। ऐसे ही
एक जैसा आपने कथा ब्याज अपने उद्बोधन में बताया आपने कि जब व्यक्ति को ऐसा महसूस हो जाता है, चाहे वो श्रोता हो श्रीमद् भागवत में या भक्ता हो, तो कि हम अब पूर्ण हो चुके हैं, अब हमें क्या सुनने या समझने की आवश्यकता है। तो और एक आपने उद्बोधन में कहा कि यज्ञ करना अश्वमेधम गौलम्बम संन्यासम परिपत्रिकम च देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंचविमर्ज्य। अभी हमारे भी इससे मतलब अपने भी गौड़ी वैष्णव में भी हम यज्ञ करते हैं, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में भी, और संन्यास होता है, और अन्य संप्रदायों में भी संन्यास और यज्ञ की परंपरा है। जबकि यह निषिद्ध है, तो इसके बारे में आपका क्या शास्त्र सम्मत दृष्टिकोण है, जो यज्ञ हो रहे हैं और संन्यास दिया जा रहा है, इसके संदर्भ में प्रकाश डालने का प्रयास।
दो ही प्रश्न था, एक तो सन्यासी के ऊपर और एक पहला प्रश्न क्या था आपका? पहला प्रश्न
क्यों किया जा रहा है जबकि यज्ञ निषिद्ध है अश्वमेधम गौलम्बम।
तो ये अश्वमेध यज्ञ जो अभी हम लोग यहाँ पर पढ़े कि राजा अंग के लिए रितिज लोग कर रहे हैं, तो वो अलग समय था जहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया जा सकता था। अभी जो कलयुग में अश्वमेध यज्ञ को वर्जित किया गया है, क्योंकि सामग्री ठीक से मिल नहीं रहा है, पहला कारण है। और दूसरा कारण, हम लोगों को अगर सन्यासी दूसरे संप्रदाय में दिया जाता है, तो फिर वो ज्ञान सन्यासी है और कर्म सन्यासी है जो वर्जित किया गया है शास्त्र में। लेकिन हमारे संप्रदाय में अगर सन्यासी दिया जाता है, तो फिर भक्ति के दृष्टिकोण से हम लोगों को दिया जाता है, सेवा के दृष्टिकोण से हम लोगों को दिया जाता है, और यही वर्जित नहीं किया गया है भक्ति के अंदर सन्यास लेने के लिए। और भक्ति के भक्ति करते हुए हम लोग संन्यास लेकर के भगवान की सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर जो श्लोक अश्वमेधम गावालम संन्यासम फलपत्रिकम देवीरण सुतोत्पत्ति कलम पचम विदुर, ये श्लोक कहा गया है, पांच चीज कलयुग में वर्जित है, वो ज्ञान और कर्म संन्यास के लिए कहा गया है, भक्त संन्यास के लिए वो मनन। अगर कोई कृष्ण के भक्त है जो उत्तम भक्ति के अंदर स्थापित है, वो संन्यास ले सकता है, उत्तम भक्ति कर रहा है। अगर उत्तम भक्ति नहीं कर रहा है, तो फिर केचित केवल भक्त वासुदेव परायण अघम, अगर अघ है अथवा पाप है, तो फिर वो संन्यास ले जाता है, मन में विषय आकांक्षा की वासना है, अगर वो संन्यास लेता है तो फिर वो पतित हो जाता है पुनः। इसके कारण भक्ति के अंदर वही संन्यास लेता है जो शुद्ध भक्ति अथवा प्रेम भक्ति के अंदर प्रवेश जिसका है। प्रेम भक्ति के अंदर अगर प्रवेश नहीं हुआ है, वो संन्यास ले जाता है, तो फिर अघ है वहां पर विद्यमान, केवल भक्ति वो नहीं कर रहा है, अथवा ज्ञान मिश्रा भक्ति कर्म मिश्रा भक्ति कर रहा है। अगर ज्ञान मिश्रा भक्ति कर्म मिश्रा भक्ति कर रहा है, वहां पर संन्यास देना खतरा है, क्योंकि संपूर्ण रूप से ज्ञान और कर्म से अनावृत होना है। अगर संपूर्ण रूप से ज्ञान और कर्म से अनावृत होंगे, अगर केवल भक्ति के अंदर शुद्ध भक्ति के अंदर रहते हुए संन्यास लेंगे, तो फिर उन लोगों का कभी पतन नहीं होता है, क्योंकि एक मनुष्य वो सिर्फ भगवान को ही अपने जीवन का सब कुछ मान करके चल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रमानंद। हरे कृष्णा
Thank you.